अभी क्रिएटिव मेडिटेशन होगा, सभी उसके लिए रेडी है? सभी मेडिटेशन के लिए रेडी है सभी? ओके, तो इसमें आप बहुत सुंदर खेल खेल में योग का अनुभव करेंगे। प्यारे बाबा ने अव्यक्त संदेश में 10 अगस्त 1999 में जो समर्पित कुमारों को के लिए एक बहुत सुंदर अलौकिक खेल करवाया, उसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो आप सबका सहयोग इसके लिए बहुत आवश्यक है। आप सभी फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर के पावरफुल योग का सहयोग सभी देंगे। अपने फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर के शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैला करके हम सभी बहुत सुंदर वायुमंडल यहाँ पर बनाएंगे। और उसके लिए मैं अभी इनवाइट कर रही हूँ जलगांव से, जो हमारे बीच में पधारे हैं, आदरणीय शांताराम भाई जी, वो आएंगे और ये अलौकिक खेल जो योग है वो अभी प्रस्तुत करेंगे।
ओम शांति। कर्ण करावनार बाबा के हम सेवा साथी निमित्त सर्वोत्तम ब्राह्मण सुफरिश्तों की सभा है, मैं देख रहा हूं। ये परियों की नगरी है, फरिश्तों की सभा है। दे दू, जैसे दीदी ने बताया है अव्यक्त संदेश का, तो इसमें हमने जलगांव में एक साथ डेमोन्स्ट्रेशन किया है, वहां में 45 मिनट्स तक किया है। यह समय की सीमा है, हम बहुत शॉर्ट में करना पड़ेगा। यहाँ 11 चेयर्स है और बाबा के तरफ से वरदान कहो, स्लोगन कहो, धारणा के लिए मुख्य इशारा कहो, ये लिखा है। तो मैं पढ़ के बताता हूं पहले कि आपको जानकारी चाहिए। ये सिर्फ जो भाग लेंगे 11 बहने, जिनको भी यहां आना है, मैंने नाम इसमें खास टीचर्स बहने आएंगी, 11 सीट्स है चेयर्स, तो 11 बहने खड़ी रहेंगी, डायरेक्शन देते रहेंगे बीच में। तो ये आप याद रखो, ये सिर्फ ये बहनों के लिए, 11 आत्माओं के लिए नहीं, नहीं, बाबा की मुरली हम सभी देश विदेश के सभी बच्चों के लिए होती है। ऐसा नहीं समझना कि ये सिर्फ 11 बहनों के लिए खेल है, लेकिन बाबा आज जो आप लोग गॉडली गिफ्ट दे रहे हर एक को, एक गॉडली गिफ्ट आपके जीवन में नेचुरल नेचर, बाबा की भाषा में हमारा स्वभाव संस्कार, हमारी विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ में हर दिन हर सेकंड दिखाई दे। वो कौन सी दिखाई दे? याद की यात्रा निरंतर, शक्तिशाली याद निरंतर, मुस्कुराते रहना, आपका वो नेचर बन जाए। बाबा ने बना के अपना हमको मुस्कुराना। थैंक यू। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये देखो सबके लिए। हाँ, ये आपको आज खास गॉडली गिफ्ट बाबा दे रहे हैं, तो ये आपको जिंदगी भर ये बातों को ध्यान रखना है। होमवर्क के रूप में श्रीमत पर चलना, शुभ सोचना, व्यर्थ से मुक्ति, विघ्न विनाशक, आत्म अभिमानी, प्रभाव मुक्त। अभी आप उस स्थिति में स्थित होता हो, उड़ती कला, धीरे बोलना, कम बोलो, पालो फादर, मीठा बोलो। ये हमारा आज का ये बाबा की जो स्पेशल मीटिंग है, वी आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। ये वाइब्रेशन, ये अनुभूति खुद करना, सभी को कराना है। ये बाबा ने आपको होमवर्क के रूप में दिया है, आज दे रहे बाबा, ये सब निमित्त मात्र। हम सब बाबा ने प्रोग्राम दिया है अवक संदेश में, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अश्विन बहन जलगांव और जिनको भी यहां टीचर्स बहन आ जाओ अपने, अलका दीदी आ रही तब तक रुको, क्योंकि अलका जी पूछ रहे आपको क्या करना है। मैं पहले डायरेक्शन देता हूं, वहां आप यहां खड़े रहना है इधर लाइन में, और आपको फरिश्ता स्थिति में पावरफुल, मैं हूं ही फरिश्ता, हम है ही फरिश्ते, हम है ही सूक्ष्मतन निवासी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते, प्लीज हम सभी को इसी स्थिति में यहां स्थित होना है। अकेले बहनों को नहीं, ग्यारह सभी को अनुभव जरूर करना है कि फरिश्ता सूक्ष्मतन ऊपर ने यहां सूक्ष्मता आया है। तो प्रैक्टिकल आपका जितना सहयोग होगा पावरफुल योग का, फरिश्ता स्थिति का, वो बहने यहां से स्टार्ट होंगी, इधर से राइट हैंड से, और वहां तक जाएंगी और फिर खुर्च के पीछे से आएंगी और सो राउंड लगाते रहेंगी, हमारे दिल में बाबा है। तो आपका जितना सहयोग होगा उतना ये फिक्टिव यहां से वाइब्रेशन विश्व तक पहुंचेंगे। वी आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, हमको ये ऑब्जेक्ट ना है कि यहां से विश्व तक वाइब्रेशन को फैलाना है। तो डायरेक्शन जो बहनी आएंगे तो यहां से चलेंगी, और अंपायर अलका दीदी, स्टेडियम है समझो, एक स्टेडियम पर बैठे स्टेडियम में, अंपायर सीटी बजाएंगे पहली विसल, तो आप बहनें स्टार्ट करेंगी चलना बाबा की याद में चारों तरफ। और जब अंपायर दूसरी सीटी बजाएंगे, तब आप जहां पहुंचे हैं ना, आपके नजदीक जो खुर्ची है वो खुर्ची पर आपको विराजमान होना है। आपके नजदीक जो खुर्ची है, समझो कोई दूर है तो भले आपको नहीं मिली तो आप आगे जा सकते, 11 बहने हैं सिर पर, 11 खुर्ची, 11 बहने बैठेंगी, और पहले आपको ये आपके कुर्सी पर क्या आपको बाबा ने गॉडली गिफ्ट इशारा किया है वो पहले, अब उस स्वमान में जिंदगी भर जब तक ये चालू है नाड़ी तब तक ये भूलना नहीं है। तो आपको बाबा ये खास वरदान दे रहे, तो आपको ये पढ़ना है और उसी स्थिति में राजमान। अंत में जो दीदी है अलका दीदी, बाबा ने उस क्या बताया बाबा ने उस समय संदेश में, कि बाबा ने सभी जो थे उनको पावरफुल दृष्टि दी, हम ऐसा अनुभव करेंगे इस समय कि बाबा पधरामनी हुई बाबा की डायमंड हॉल में, जैसे हम बाबा के मिलन बनाते रहे डायमंड हॉल में, समक्ष मिलन बनाते बाबा से, उस समय में कैसे खो जाते लगने मगन। तो उस लास्ट में गीत बजेगा, जो भी बजेगा, सामने जो दीदी है वो ऐसा समझो कि बाबा हमको दृष्टि दे रहे, उस समय ऐसा लास्ट में फिनिश जब होता है ना लास्ट में, तो जैसे ही बाबा हमको दृष्टि दे रही है सब फरिश्तों को, वो दीदी आ रही है इसलिए रुके क्योंकि सीटी बजने विसल बजने के सिवा स्टार्ट नहीं होगा ना गेम, ये स्पिरिचुअल गेम, अलौकिक खेल। आपको मालूम है अलका दीदी है नहीं? अच्छा, कोई फिर किसको बुलाया आप, कोई कौन बुलाओ ना किसको, लक्ष्मी बहन आ जाओ, चलो बाबा तो प्लीज क्योंकि टाइम नहीं हमको प्लीज 11 बजे आ जाओ जिनको भी आना है खुली छुट्टी है 11 आपको डायरेक्शन दे दिया है वहां पीछे करो आपके पीछे नहीं बैठा नहीं अभी नहीं या इनके पीछे लाइन प्लीज लाइन हाँ पीछे प्लीज लाइन लगाओ ना बहने 11 बहने सिर्फ आपको विसल बजानी है तब स्टार्ट होगा ये विसल है ना ये धुलाई करके लाया है स्वच्छ करके लाया आप विसल बजाएंगे ना तब स्टार्ट होंगे घूमने के लिए सुना डायरेक्शन
एक बार बजाना है
तब स्टार्ट होंगे वो
स्टार्ट होंगे
दूसरी बार वो जो 2-3 राउंड फिरेंगे ना फिर आप दूसरी सीट से विसल बजाएंगे तो वो अपने चेयर पर बैठ जाएंगे प्लीज बहने लाइन लगाओ 11 बहने सिर्फ अभी नहीं मैं बताऊंगा तब वो दो दो तीन चार मिनट मैं कमेंट करूंगा ना 5 मिनट के अपना मैं आपको इशारा करूंगा ना तब भी विसर जाएंगे सब बाबा के हाथ में पार हो प्लीज आप और बाप बस आपका सहयोग बहुत आवश्यक है आप जितने शक्तिशाली हाथ में रहेंगे प्लीज हो गए 11 महीने 11 कुर्सी है ज्यादा नहीं क्योंकि आप लोग टाइम हो जाएंगे ना प्लीज हाँ ठीक है अभी आप बाबा के हाथ में खड़े आपको फरिश्ता स्थिति में हर कदम बाबा के हाथ में चलना है आपका जितना सहयोग होगा उतना अभी अंपायर दीदी जी आपको इशारा करेंगे सीटी बजाएंगी और आप स्टार्ट करेंगे बाबा के हाथ में ऐसे चारों ओर घूमेंगे और थोड़ी कमेंट चलेगी बीच में तब 5 मिनट के बाद दूसरी सीटी बजेंगी तब आपको विराजमान होना है कुर्सी पर यह है फरिश्तों की दुनिया हम फरिश्तों के मस्तक पर अविनाशी ज्ञान सूर्य का सदा चमकता हुआ सितारा चमक रहा है अनुभव करो मस्तक मणि भ्रुकुटे में भाग्य का सितारा सफलता का सितारा चमक रहा है दोनों नयनों से रूहानी शक्तिशाली किरणें निकल रही है जैसे ये नयन जादू की डिब्बी जैसे कि नयनों में दो बल्ब चमक रहे हैं कमल नयन आत्मिक वृत्ति की दृष्टि रूहानी की चमक नयनों से किरणें निकल रही है हम सब फरिश्तों के माथे पर पवित्रता का लाइट का ताज चमक रहा है अनुभव करो अपना चमकता ताज लाइट का पवित्रता का ताज सभी अनुभव करो प्लीज। हम फरिश्तों के मुख से ज्ञान के हीरे मोती, ज्ञान रत्न चमक रहे हैं। मुख कमल, मीठे बोल, वरदानी बोल, सत्य वचन निकल रहे हैं। हम फरिश्तों के ओठों पर रूहानी पवित्रता की लालिमा चमक रही है। मुस्कुराता चेहरा भी सेवा कर रहा है। बाबा ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। हम फरिश्तों का चेहरा बाप का परिचय दे रहा है। हम किसके बच्चे हैं? फेस इज द मिरर ऑफ द माइंड, सन शोज फादर। हमको देखकर समवन संप वाली आत्माओं को बाबा की याद आती है। चेहरा से सेवा हो रही है हम फरिश्तों के। हम फरिश्तों के दिल में दिलाराम समाया हुआ है। दिल को आराम देने वाला दिलाराम के हम दिल रुबा है। वो दिल वाला के हम दिल वाले बच्चे हैं। शास्त्रों में हनुमान के दिल में राम अभी हमारी प्रैक्टिकल इस समय की वो यादगार है। हम वो महावीर हैं। हम फरिश्तों के हाथों पर सर्व खजानों की भाग्य की रेखाएं चमक रही है। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, हर श्वास का खजाना, खुशियों का खजाना, दुआओं का खजाना। ये खजाने की रेखाएं हमारे हस्तों पर चमक रही है। अनुभव करो। हम फरिश्ते बाबा की याद में हर कदम उठा रहे हैं। हम खुशहाल है, फरिश्तों की चाल है। हर कदम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। हर कदम ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख चल रहे हैं। हमारी चलन बाप को प्रत्यक्ष कर रही है। हम डबल लाइट फरिश्ते हैं। प्रकाश में शरीर में प्रकाश पुंज आत्मा, ज्योति काया वाला शरीर में ज्योतिर्बिंदु आत्मा, ब्राइट स्टार चमकता हुआ अजब सितारा, दिव्य सितारा। लाइट में भी लाइट, प्रकाश में भी प्रकाश। कितनी हल्की प्यारी न्यारी अवस्था है। डबल लाइट हम फरिश्ते हैं। लास्ट, हम फरिश्तों का श्रृंगार डायमंड का नहीं, गोल्ड का नहीं, प्रकाश का श्रृंगार है। हम परियों के नाक में लाइट की नथरी चमक रही है। हम फरिश्तों के मस्तक में मस्तक मणि चमक रहा है। माथे पर पवित्रता का लाइट का ताज चमक रहा है। कानों में लाइट के कुंडल चमक रहे हैं। गले में दिव्य गुणों की रंगी बिरंगी चमकीली सफलता की मालाएं चमक रही है। लाइट की मालाएं रंगी बिरंगी, हाथों के मनगट पर अनुभव करो प्लीज, हाथों के मनगट पर पवित्रता के लाइट के कंगन चमक रहे हैं। कमर में हिम्मत उमंग उत्साह का कमर पट्टा लाइट का चमक रहा है। पांवों में लाइट के घुंघरू चमक रहे हैं। अभी फरिश्ते चलते हुए जहां भी कुर्सी मिली आप वहां बैठ विराजमान होना है। जहां कुर्सी रिकामी है वहां बैठ जाओ। पहले आप प्लीज आपके आपको कौन सा वरदान दिया वो पढ़ो प्लीज। आपको सभी जो हाँ वो पढ़ा भाई आपने पढ़ा, सबने पढ़ा प्लीज। हाँ ते आपके लिए गॉडली गिफ्ट प्लीज। ये बाबा ने अव्यक्तिशा दिया है कि ये आज से बाबा ने आपको जिंदगी भर के लिए विशेषता क्या बोलते स्पेशलिटी बोलते स्पेशलिटी क्या क्या बोलते हैं विशेषता दाता के डॉक्टर विशेषता ऐसे क्या बोलते हैं विनय भाई स्पेशलिस्ट। हाँ तो ऐसे आंकड़ा तो है लेकिन आपके लिए आपके लिए बाबा ने जिंदगी भर आपने ये विशेषता इनके लिए नहीं सबके लिए ये जो 11-15 लिखा है ये आपके लिए आज से अभी से होमवर्क के रूप में बाबा ने दिया है प्लीज होमवर्क। सभी अनुभव करेंगे आपको तो दिया ही पहले से। अभी जैसे ऐसा अनुभव करना है कि डायमंड हॉल में बाबा की बदरमणी हुई है और बाबा का अवतरण हुआ है। यहां हमारे साथ बाबा है, ये बाबा करा रहा है, वी आर इंस्ट्रूमेंट। बाबा यहां है और बाबा लक्ष्मी दीदी के द्वारा आप लक्ष्मी दीदी आपको सबको शक्तिशाली दृष्टि देंगी। एक गीत बजेगा और वो ये लास्ट इसकी समाप्ति क्योंकि समय हो गया है ना इसलिए हम शॉर्ट में ले रहे। गीत शुरू करो भाई सब अव्यक्त मिलन का अनुभव करेंगे।
ओम शांति। अभी जो 11 फरिश्ते बैठे हैं वो अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। सभी ने फरिश्ता स्थिति का अनुभव किया, सबने किया, हाथ नहीं उठ रहे बाकी लेट आए इसीलिए। इस अलौकिक खेल में आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि तन घूम रहा था और मन तन घूम रहा था और मन मन स्थिर था, राइट? तन घूम रहा था और मन स्थिर था। तो इसीलिए कहते हैं कि तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ और मन जितना स्थिर रहे उतना स्वस्थ। तो इस खेल में हम सब ने यही देखा। तो सभी फरिश्ते अभी हम सभी और गाइडलाइन प्राप्त करेंगे, क्योंकि अभी का हमारा जो सेशन है लोकल चैप्टर प्रेजेंटेशन का है, फर्स्ट सेशन है। तो और गाइडलाइन आप सबको प्राप्त कराने के लिए मैं जो लोकल चैप्टर प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी शांताराम भाई जी को। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए। बारशी से सुमन बहन यहाँ पर है उपस्थित, बारशी की सुमन बहन, भुवनेश्वर दुर्गेश बहन है यहाँ पर, ठीक है। मैं अभी फिर जो नहीं है अभी जो सुन रहे हैं अपना नाम वो हॉल में आएंगे, और जिनका नाम अभी मैं लूंगी वो स्टेज पर आएंगे अपना प्रेजेंटेशन करने के लिए। तो अभी मैं बुलाना चाहूंगी अंबरनाथ से संतोष भाई और तनुजा बहन जी, दोनों आएंगे और अपना प्रेजेंटेशन देंगे। बहुत पुराने स्पार्कलर है तनुजा बहन जी को तो आप सभी जानते ही होंगे, जो नए आए हैं वो जानते हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं मुंबई अंबरनाथ सेंटर। तो अभी हम सभी सुनेंगे।
ओम शांति। इस साल हमारे पास अंबरनाथ में जो प्रोजेक्ट बनाया गया उसका नाम है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। हर क्षेत्र में एकाग्रता की उपयोगिता है ही है, उसके बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो एकाग्र मन हम सभी करना चाहते हैं, कई विधियां भी पता है, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करें। तो ये प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत छोटा सा है, आधा घंटे का, जिसमें आपको बताया भी जाएगा। पिछले साल दो प्रोजेक्ट बनाए थे हमने, उसका नाम था सेल्फ मोटिवेशन और थॉट्स पावर, संकल्प शक्ति और स्वयं प्रेरणा, जो आज आपके सामने विमोचन हुआ किताब का। तो उस किताब में ये तीनों प्रोजेक्ट सम्मिलित है और चित्र के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी है। आप अपने जगह पर भी इसको कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज कंपनीज में। आपको अगर पीपीटी चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी, और कुछ ट्रेनिंग भी आप रखना चाहते हैं आपके शहर में आपके जोन में तो भी रख सकते हैं। तो मैं पहले स्वयं प्रेरणा जो प्रोजेक्ट था सेल्फ मोटिवेशन, ये मुंबई में बहुत जगह पे किया गया, तो उसका थोड़ा शॉर्ट में रिपोर्ट सुनाऊंगी, उसके पश्चात संतोष भाई ये एकाग्रता के ऊपर बताएंगे। और ये जो किताब बनी है ये किताब आप सभी भी खरीद सकते हैं, कल से जब काउंटर लगेगा तो ये किताब मिलेगी। स्वयं प्रेरणा नाम है लेकिन उसके अंदर तीन प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है स्वयं प्रेरणा प्रोजेक्ट का। इसका उद्देश्य था कि जीवन में मेडिटेशन के महत्व को जानना। सेंटर अंबरनाथ मुंबई, प्रोजेक्ट बनाने का समय दो महीना, दो महीने में ये प्रोजेक्ट बना। और प्रेजेंटेशन कार्यक्रम 110 जगह पे हुए। दर्शक विद्यार्थी और जो भी कंपनीज में थे 1135 थे, कंपनी और अन्य संस्थाएं 19 थी, कुल स्कूल जो थे वो 91 विद्यार्थियों की जो कक्षा थी वो 5वीं से 12वीं तक, FY से TY तक भी था, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ये सब में अलग अलग जो स्कूल कॉलेज थे। तो मराठी मीडियम 62 स्कूल थे, इंग्लिश मीडियम 12 और हिंदी मीडियम 10 स्कूल थे। कन्नड़ मीडियम में भी हुआ, तेलुगु मीडियम, उर्दू मीडियम, सिंधी मीडियम, तमिल मीडियम, ये सभी स्कूलों में इसका प्रयोग किया गया और बहुत सिंपल भाषा में है, आप सभी भी करा सकते हैं, आधा या पौना घंटा कोई भी कंपनी या स्कूल वाले इजीली देते हैं। और आप सभी अपनी जगह पे कराएंगे, आपको खुद को भी आपका सेल्फ मोटिवेशन हो जाएगा कराते कराते, क्योंकि ये बहुत इजी है और कराने से भी मजा आता है और सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। तो अभी हम सुनेंगे एकाग्रता इस प्रोजेक्ट के ऊपर, संतोष भाई सुनाएंगे। इस स्वयं प्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन जो किया गया उसका छोटा सा क्लिप है 2 मिनट का, वो आपको पहले दिखाएंगे।
ओम शांति। ये 2 बरस पहले एक जो प्रोजेक्ट बनाया था सेल्फ मोटिवेशन स्वयं प्रेरणा, इस प्रोजेक्ट के 100 से ज्यादा प्रेजेंटेशन हुए हैं, अनेक स्कूल और कंपनियों में प्रोजेक्ट किया। हाँ, तो स्कूल के बच्चों के लिए ये स्पेशल प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट होने के बाद बहुत सारे लोगों ने उसकी स्क्रिप्ट भी मांगी थी और उसका PPT भी मांगी थी, तो बहुत सारे लोगों ने वो ली भी है, शायद उन्होंने वो प्रोजेक्ट कहीं किया भी होगा। और अभी जो हमने दूसरा प्रोजेक्ट बनाया है उसका नाम था पावर ऑफ थॉट्स, उसकी भी PPT बहुत सारे लोगों ने ली है। ये जो प्रोजेक्ट बनाया है ये स्कूल के बच्चे और कंपनियों के लिए ही है, जैसे कि ज्ञान में जो लोग हैं उनको तो सब सारी चीजें पता है, पर बाहर वालों के लिए क्या दिया जाए इसके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है। स्पेशली हमने मेडिटेशन को अलग ढंग से बताया है और ये जो एकाग्रता का जो किया है वो भी कुछ अलग ही बनाया है, कि जैसे कि बच्चों को या कंपनी में जाएंगे तो उनको एकाग्रता की परिभाषा थोड़ी सी अलग करके बताने की कोशिश की है। हाँ, और सेल्फ मोटिवेशन में जो पॉइंट्स हैं वो तो पहला है कि अपने जीवन का चित्र बनाओ, पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी शक्ति को पहचानो, जीवन में नई शुरुआत करो और समय का महत्व और मेडिटेशन की जरूरत, ऐसे पॉइंट सेल्फ मोटिवेशन के अंदर सम्मिलित है। और वो बहुत ही प्रोजेक्ट लोगों ने पसंद किया है, बच्चों ने भी पसंद किया है और हमें बहुत सारे लोग अभी बुलाते हैं प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो हमने सोचा कि उसका एक स्क्रिप्ट तैयार करके अगर बुक आपको दे दिया जाए और आप लोग भी वो तैयार हो जाए करने के लिए, तो हम सॉफ्ट कॉपी भी देने वाले हैं और अलग अलग जगह पर जाके वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एक क्लिप है, वीडियो क्लिप। शांति, ये क्लिप थी। और अभी जो एकाग्रता नया प्रोजेक्ट बनाया है उसकी शुरुआत है, ये प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। पूरा करना प्यारे भाइयों और बहनों, महेंद्र सिंह धोनी जब अपने करियर की शुरुआत कर रहा था, तभी शुरू में ही उसे सरकारी नौकरी मिली। अगर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि मुझे परमानेंट नौकरी मिल गई, अच्छा पगार है और रिटायर होने के बाद पेंशन भी मिलेगी, तो उसे लगता है कि मेरा सारा करियर पूरा हो गया। मगर धोनी उस नौकरी से खुश नहीं था। उसके मन में एक ही विचार था, वो था क्रिकेट। और उसका संपूर्ण ध्यान जो था वो पूरा क्रिकेट पर ही था। इसकी वजह से क्या हुआ, सदा उसका ध्यान क्रिकेट पर होने की वजह से वो आज क्रिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है। वैसे ही जीवन में जिस बात पर हम अपना ध्यान देंगे, अटेंशन रखेंगे, वो चीज हम आगे जाकर पा सकते हैं। तो इसलिए देखेंगे पहला कि क्या है ये ध्यान, अटेंशन। अटेंशन का मतलब है अपना मन सही समय सही जगह पर होना जरूरी है। जैसे क्लासरूम में होगा, बच्चा क्लासरूम में होगा तो उसका ध्यान जो है वो शिक्षक पर होना जरूरी है। अगर वो अभ्यास करता है तो उसका ध्यान किताब में होना जरूरी है। अगर व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसका ध्यान मशीन पर होना जरूरी है। अगर हम दर्शक है तो अपना ध्यान वक्ता के ऊपर होना चाहिए। अगर हम कुछ ड्राइविंग कर रहे हैं, जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमारा ध्यान स्टीयरिंग पे होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सही समय सही जगह पर हमारा ध्यान होना जरूरी है, नहीं तो कभी कभी हमें वो नुकसानदायी हो सकता है या कभी खतरनाक भी हो सकता है। देखो, एक व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट का काम कर रहा था, उसे किसी किताब की जरूरत पड़ी तो लाइब्रेरी में गया। लाइब्रेरी में जाके उसने कई किताब देखी मगर उसे जो विषय की किताब चाहिए थी वो किताब नहीं मिली। फिर वो घर पर आया, बहुत थका था और उसे ऐसा लगा कि जो किताब मुझे चाहिए थी वो तो मुझे मिली नहीं, मेरा वक्त व्यर्थ गया। वो आके अपने चेयर पर बैठा, उसने सामने टेबल पर पड़े पेपर देखे, उसके प्रोजेक्ट के पेपर देखे तो झट से उसके ध्यान में आया कि उसे कौन से विषय की किताब चाहिए थी। इसका अर्थ यह है कि जहां उसको जो चीज ध्यान में आनी थी वो वह चीज ध्यान में नहीं आई, मगर वो घर पर आया तो वो चीज वह उसके ध्यान में आई। इसका मतलब सही समय सही जगह पर वो चीज ध्यान में नहीं आ रही है। देखो, कभी कभी विद्यार्थी क्या होते हैं, परीक्षा में जाते हैं और सवाल का जवाब परीक्षा हॉल के अंदर उनको ध्यान में नहीं आता, मगर परीक्षा हॉल के बाहर जब आते हैं और मित्रों के साथ बात करते हैं तभी उनके ध्यान में आता है, अरे इसका जवाब तो मुझे मालूम था। इसका अर्थ क्या हुआ, सही समय सही जगह पर वो चीज हमें याद नहीं आती। तो पहले क्या करना चाहिए इसके लिए, ध्यान, अटेंशन, और अटेंशन का क्या है आगे, एकाग्रता। तो इसके लिए देखेंगे एकाग्रता की विधि क्या है। तो इसकी परिभाषा है एक ही चीज पर ध्यान देना, एकाग्रता की परिभाषा है एक ही चीज पर ध्यान देना, और उसकी विधि है जो हम सब जानते हैं, एक जगह पर बैठना, अपनी हलचल को रोकना, बिंदु का निरीक्षण करना, विचारों का नियंत्रण करना और मन की शांति को प्राप्त करना, यह उसकी विधि है। देखो, स्कूल में सबसे पहले प्रार्थना का सत्र होता है। प्रार्थना का सत्र इसलिए होता है क्योंकि विद्यार्थी पहले अपने मन को शांत करें, मन को एकाग्रित रखें, ताकि दिन भर जो उनको पढ़ाया जाए वो अच्छी तरह से उनके ध्यान में रहे। इसके लिए सबसे पहले उन प्रार्थना का सत्र होता है। और एकाग्रता की विधि स्कूल में प्रार्थना के सत्र के समय उन्हें सिखाई जाती है, उन्हें कुछ समय के लिए मौन रखना कंपलसरी है, तो बच्चे स्कूल में ही एकाग्रता से परिचित होते हैं। वैसे हम सभी भी एकाग्रता की विधि से परिचित हैं। अभी हम आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, हमें तो एकाग्रता की विधि से हम परिचित है ही, फिर भी मन के शांति के प्रयोगी, मंदिर में भक्ति करने वाले, वैज्ञानिक संशोधन करने वाले, खेल खेलने वाले या कोई विशेषज्ञ हो, वो सभी एकाग्रता की अलग अलग विधि से परिचित होते हैं। तो आगे देखेंगे कि एकाग्रता का क्या उपयोग है। पहले हमने देखा कि ये साइड में एकाग्रता की विधि क्या है और उसे आप देखेंगे कि उसका कहाँ उपयोग करना है। हमने देखा कि एकाग्रता की विधि है एक जगह बैठना, मगर हम उपयोग कहाँ करेंगे, कार्य करते समय। विधि है हलचल को रोकना, मगर उपयोग करेंगे हमें अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ाने के लिए। विधि है बिंदु का निरीक्षण करना, मगर उपयोग करेंगे विशालता का, इस विश्व के विशालता का परीक्षण करने के लिए, विशालता को जानने के लिए। विधि है विचारों का नियंत्रण करना, मगर उपयोग करेंगे विचारों का विकास करने के लिए। विधि है मन की शांति प्राप्त करना है, मगर उपयोग करेंगे लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, हम उपयोग करेंगे उसका। अब देखेंगे, यहां हमने देखा कि एकाग्रता का उपयोग आखिर लक्ष्य की प्राप्ति, तो ये एकाग्रता और लक्ष्य का क्या संबंध है ये हम अभी देखेंगे। इसके पहले एकाग्रता और लक्ष्य दोनों का कैसे संबंध है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर है। जैसे जैसे हमारी मन की एकाग्रता बढ़ेगी वैसे वैसे हम लक्ष्य की ओर जाएंगे, और जैसा जैसा हमारा लक्ष्य निश्चित हो जाएगा वैसे वैसे हमारे मन की एकाग्रता बढ़ेगी। अब देखिए, मीरा की जो भक्ति थी उससे हम सभी परिचित हैं कि मीरा कैसे श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। और ये उदाहरण है कि मीरा का लक्ष्य था कि श्री कृष्ण को पाने का। और शुरू शुरू में मीरा सोचती थी कि श्री कृष्ण जो है वो मेरे आसपास है, वो मेरे है और मेरे आसपास है। बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे मीरा की भक्ति बढ़ गई तो मीरा को ऐसा लगा कि श्री कृष्ण अब मेरे आसपास नहीं, तो श्री कृष्ण तो मेरे रोम रोम में है, श्री कृष्ण मेरे सांस में है। एक दिन क्या हुआ, श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और मीरा के सामने आए। लोगों ने मीरा को बताया कि तुम्हारे सामने श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, तो भी मीरा श्री कृष्ण को पहचान नहीं सकी। मीरा ने कहा, मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मेरा अंग अंग श्री कृष्ण है, मैं श्री कृष्ण हो गई हूँ। मतलब मीरा की भक्ति इतने अंतिम चरण थी कि वो श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को ही श्री कृष्ण समझने लगी थी। तो मीरा की जो भक्ति थी वो उसके एकाग्रता का एक आदर्श उदाहरण था। और मीरा का जो लक्ष्य था श्री कृष्ण को पाना, वो भी अपने जीवन का सबसे आदर्श उदाहरण है। तो अगर ये देखा जाए, मीरा का ये उदाहरण देखा जाए, तो एकाग्रता और लक्ष्य एक दूसरे के कितने निर्भर है ये हम समझ सकते हैं। जैसे कि एकाग्रता और लक्ष्य अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। अब देखेंगे कि कैसे लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य कैसा होना चाहिए। हमने लक्ष्य के बारे में अभी तक बहुत कुछ सुना है, तो ये भी सुना है कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। तो स्पष्ट में क्या है, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होना चाहिए। दूसरा है क्षमता। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अचीवेबल होना चाहिए, जो हम अचीव कर सकते हैं वही लक्ष्य रखो। मगर अभी हम कह रहे हैं कि लक्ष्य हमारा ऐसा हो जो हमारी क्षमता बढ़ाने वाला हो, भले अचीवेबल नहीं हो, कैपेबल नहीं हो, मगर हमारी क्षमता बढ़ाने वाला जरूर हो, वो हमारी निर्माणता भी बढ़ाने वाला हो। हमारा लक्ष्य हमारी पसंद का हो, जिससे हमें स्नेह मिले और जिससे हमें आनंद मिले। हमारे लक्ष्य का स्तर जो है वो उच्च हो और उसके उद्देश्य में सच्चाई हो, और हमारा जो लक्ष्य है उसका वर्तमान उज्ज्वल हो। हम अभी लक्ष्य, हमारे पास दो लक्ष्य है। हमारा एक लक्ष्य है कि लक्ष्मी नारायण बनना, वो भविष्य में बनना है। मगर आज हमारा एक लक्ष्य है बाप समान बनना, वर्तमान में हमारी स्थिति को उच्च करना। तो आगे जाकर भविष्य में क्या लक्ष्य को पाना है वो तो आगे की बात है, मगर हमारा आज वर्तमान क्या है, हमारी स्थिति कैसी है, वो हमारा वर्तमान को उज्ज्वल करना करने वाला लक्ष्य हमें रखना है। इसके लिए हम देखेंगे एक उदाहरण है, सर रॉजर बेनिस्टर। 1954 के पहले की बात है, तभी 4 मिनट में 1 मील की दौड़ पूरी करना नामुमकिन था, क्योंकि अनुभवियों का कहना था कि अगर कोई ऐसी दौड़ करता है 4 मिनट में 1 मील, तो मनुष्य का शरीर उसको साथ नहीं दे सकता है। तो हो सकता है मनुष्य का शरीर पर इतना प्रेशर आएगा और ये मनुष्य के जान के लिए भी खतरनाक हो सकता है। मगर सर रॉजर बेनिस्टर ने ये लक्ष्य नामुमकिन चीज को मुमकिन करने का एक लक्ष्य लिया, और उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत से और अपने अभ्यास से 1954 में 4 मिनट में 1 मील की दौड़ पूरी की और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। देखो, उन्होंने जो लक्ष्य रखा था वो उनकी क्षमता बढ़ाने वाला था। तो हमें भी क्या करना है, हमारा ऐसा लक्ष्य हो जो हमारी क्षमता को बढ़ाए। आगे देखेंगे कि एकाग्रता के लिए कौन सी चीजें जरूरी है। तो सबसे पहले है स्वयं को जानना। इसमें कुछ अलग बताया है, मैं कौन हूं और क्या हूं, दूसरे क्या है और वो कैसे हैं। देखो, एकाग्रता की शुरुआत कहाँ से होगी, इसके लिए बहुत एक अच्छा कबीरा का दोहा है। उसमें कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में गलकटियन के पास, जो कर से वो भर से तू भला की उदास। इसका अर्थ ऐसा है कि कबीरा एक बाजार में खड़ा है, ऐसे दुकान के सामने खड़ा है कि उन्हें दिखाई दे रहा है कि प्राणियों के गले काटे जा रहे हैं, फिर भी वो अपने मन को समझाते हैं कि जो करने वाले हैं वो भरने वाले हैं, फिर तू क्यों उदास हो रहा है। वैसे ही है, हम क्या कर रहे हैं, दूसरों का क्या चल रहा है यही देखते हैं, मगर हमें दूसरों का देखने की जरूरत नहीं, हमें अगर जीवन में एकाग्रता लानी है तो स्वयं पर ध्यान देना है। और इसके लिए बाबा ने मुरली में बहुत सा अच्छा एक शब्द दिया है, साक्षी दृष्टा बनना। तो ये साक्षी दृष्टा बनने की अगर हम प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम जीवन के अंदर जल्दी से जल्दी एकाग्रता ला सकेंगे। और स्वयं को जानने में क्या होता है, एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देता हूं आपको। एक गुरुकुल के आचार्य थे, उन्होंने क्या किया, उनका जो एक शिष्य था उसका अभ्यास पूरा हुआ तो उसको एक भेंट में एक ऐसा दर्पण दिया, वो विशेष दर्पण था। उस दर्पण में क्या था, दर्पण में देखने से मन के अंदर जो छिपे हुए भाव थे वो दिखाई देते थे। शिष्य को जब दर्पण दिया गया, शिष्य ने क्या किया, वो दर्पण अपने गुरु के सामने ही रखा और उसको दिखाई दिया कि गुरुजी के मन में छिपे भाव थे, क्रोध था, अहंकार था, कुछ दुर्गुण थे। तो उस शिष्य को बड़ा दुख हुआ, उसे ऐसा लगा कि मेरे जो गुरुजी है तो मुझे तो परिपूर्ण लगते थे मगर उनके मन में भी कोई दुर्गुण है। शिष्य वो दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना हुआ, उसने अपने मित्रों से और जो उनके परिचित थे उनके सामने ये दर्पण रखा और उनकी भी परीक्षा ली, फिर भी क्या हुआ, उन सभी के मन में कोई न कोई दुर्गुण दिखाई दिया। आखिर शिष्य ने अपने माता पिता के सामने वो दर्पण रखा तो उसे दिखाई दिया कि माता पिता के मन में भी कोई दुर्गुण था। तो सबसे लास्ट वो शिष्य था, वो फिर गुरुकुल में आया और उसने अपने गुरुजी से बताया कि मैंने इस दर्पण से अनेकों की परीक्षा ली मगर क्या हुआ, सबके मन में कुछ न कुछ मुझे दुर्गुण ही दिखाई दिया। तो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने उस दर्पण का जो रुख था वो शिष्य के सामने पकड़ा, तब वो शिष्य को दिखाई दिया कि उसके मन में भी बहुत कुछ दुर्गुण थे। तब गुरुजी ने बताया, ये दर्पण मैंने तुझे इसके लिए दिया था कि तुझे उसमें अपने दुर्गुण देखने हैं न कि दूसरों के, अगर तू अपने दुर्गुण देखता तो आज तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता, इसीलिए हमें क्या करना है, अपने को देखना है। और अपने को देखना इसका अर्थ ही है एकाग्रता की शुरुआत करना। जब हम औरों से अपना मन निकाल देंगे तो ही हम एकाग्रता की शुरुआत कर सकते हैं। और इसके आगे देखेंगे सीखते रहना। इस सीखते रहना मतलब क्या है, बदलना बढ़ना सीखेंगे तो ही बदलेंगे और जीवन के अंदर बढ़ते जाएंगे। ऐसा कहा जाता है सबसे अच्छा जीवन जो है वो विद्यार्थी जीवन। मगर आजकल क्या हुआ है, ऐसा नहीं है कि केवल स्कूल में हम जाते हैं वही विद्यार्थी जीवन है, उसके आगे भी जो हम जीवन के अंदर कई बातों में सीख सकते हैं। मगर क्या होता है, आजकल दूसरों ने सिखाया हुआ हमें अच्छा नहीं लगता, ये सब ये रियल परिस्थिति है कि कभी भी हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें दूसरा नहीं सिखाए क्योंकि सब कुछ हमें आता है। देखो सदी के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी है, वो अभी उनका उम्र 70 साल से भी ज्यादा है, फिर भी अनेक फिल्मों का काम उनके पास है, वो इंडस्ट्री के सबसे व्यस्त कलाकार है। तो उनका एक विशेष गुण है कि उनके सामने अगर 30 आज उनके सामने 30 साल का डायरेक्टर है, फिर भी वो 30 साल के डायरेक्टर से जो वैसा कहता है वैसा ही वो सीन सीखते हैं और वैसा उसके अनुसार ही करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, वो कहते हैं, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि मुझे जीवन में अभी तक बहुत कुछ सीखना है, और उनके सीखने के गुण से ही वो आज इतने बड़े और महान बन गए हैं। तो हमें भी क्या करना है, जीवन में आखिर तक सीखते रहना है और सीखेंगे तो ही जीवन में कुछ पा सकेंगे। सीखने के बाद है अभ्यास करना। कहते हैं अभ्यास ही मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। तो अगर जीवन में हमें परिपूर्ण बनना है तो सदा अभ्यास करते रहना है, और अभ्यास भी नियमित और सही मात्रा में होना चाहिए। यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है, गांव का एक पुराना खेल है, उस खेल में ऐसा है, आज के जो वेट लिफ्टिंग का खेल है वैसे ही है, पर पहले क्या उसमें क्या होता था, मैदान के अंदर बैल को उठाना पड़ता है। पहलवान क्या करते हैं, मैदान में बैल को उठाते हैं, मगर कैसे उठाते हैं, उसका प्रैक्टिस उसका अभ्यास वो कहां करते हैं, बैल जब बछड़ा होता है छोटा होता है तभी उसको गौशाला में जाकर उन्हें उठाने का प्रैक्टिस करते हैं वो पहलवान। और बाद में क्या होता है, रोज प्रैक्टिस होने की वजह से वो बैल को मैदान में उठा सकते हैं। उसमें मराठी में एक बहुत अच्छी कहावत है, मैदानात बैल उचलायचा असेल तर गोट्यात वासर उचलावी लागतील। इसका मतलब मैदान में अगर बैल उठाना है तो गौशाला में उसका बछड़ा उठाना होगा। इसका मतलब अगर हमें कुछ बड़ा जीवन के अंदर करना है तो उसकी शुरुआत, उसका प्रैक्टिस छोटी छोटी चीज से करना होगा। मगर हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज में नहीं जाते, बड़ा करना चाहते हैं। तो आज से हम क्या करेंगे, छोटी छोटी चीज का सदा अभ्यास करते रहेंगे तो जरूर हम आगे बड़ा कार्य कर सकेंगे। ये सारे एकाग्रता के पॉइंट्स हैं। आगे है अनुभव करना। ऐसे कहा जाता है सबसे अच्छा शिक्षक अनुभव है, मनुष्य का सबसे अच्छा शिक्षक अनुभव है। तो अनुभव से क्या है, गलतियों से सीखना है, गलतियों से सीखेंगे और उसके अंदर सुधार करेंगे। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कार्य करना हम सोचते हैं कि ये कार्य करेंगे, मगर बाद में हमें लगता है नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, उसमें नुकसान हो सकता है, और कार्य शुरू ही नहीं करते। अगर हम कार्य शुरू ही नहीं करेंगे तो अनुभव कैसा लेंगे। दूसरे एक बात है कि लोग कार्य करना शुरू कर देते हैं और आधे में ही उसको रोक देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आगे जाकर हम कर नहीं सकेंगे। अगर हम आधे में ही रोकेंगे तो भी वो अनुभव नहीं होगा। जब तक कोई भी कार्य हम पूरा नहीं करते तब तक हम अनुभव नहीं ले सकते। देखो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन जब बिजली के बल्ब का संशोधन कर रहे थे तो लगभग 1000 प्रयोग फेल हो गए, विफल हो गए। फिर भी क्या करते थे, हर प्रयोग के बाद उसने सुधार करते थे और अगला प्रयोग करते थे। और लगभग 1000 प्रयोग के बाद क्या हुआ, उनका प्रयोग सफल हुआ। तब उन्हें पूछा गया कि इसके पहले जो आपने लगभग 1000 प्रयोग किए वो आपका व्यर्थ गए क्या, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उन 1000 प्रयोग का अनुभव मिला और कौन से फॉर्मूले से बिजली का बल्ब जलता नहीं, इसके 1000 फॉर्मूले मुझे मिले। इसका अर्थ है अनुभव। तो हर बात में क्या होता है, गलती होगी तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें क्या मिलता है, हमें अनुभव मिलता है। तो हमें जरूर जीवन के अंदर अनुभव की प्राप्ति करना है। और बाद में है समर्पित बनना। समर्पित किसके लिए, अगर हमने लक्ष्य तय किया है तो लक्ष्य के लिए, लक्ष्य के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। मगर आजकल क्या हुआ है, मनुष्य अति जल्दबाजी का शिकार हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी में है और एक साथ अनेक कार्य कर रहा है। तो एक साथ अनेक कार्य करने की वजह से क्या होता है, किसी एक चीज पर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। इसलिए अभी क्या करना है, कोई एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तब जाके हमारी मन की अवस्था उच्च बनेगी और लक्ष्य के प्रति हम समर्पित हो सकेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन एक दिन अपने घर में खाना खा रहे थे, बहुत थके थके लग रहे थे। तो उनके पत्नी ने उन्हें कहा कि आप बड़े थके थके लग रहे हैं, कुछ दिन के लिए आप छुट्टी क्यों नहीं लेते और कहीं घूमने के लिए क्यों नहीं जाते। तो उन्होंने अपने पत्नी को पूछा कि छुट्टी लेकर कहाँ जाऊं, तो उनके पत्नी ने उन्हें बताया कहीं भी जाओ जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपको आनंद मिले, ऐसी जगह आप जाओ। तो झट से उठे और उन्होंने अपने पत्नी को कहा मैं उसी जगह जा रहा हूं जहां मुझे आनंद मिलेगा, जहां मुझे खुशी मिलेगी, और वो सीधा अपने प्रयोगशाला में गए। इसका अर्थ क्या, जो चीज हम लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसमें हमें समर्पित होकर रहना होगा। अगर उस चीज के पीछे हम समर्पित हैं तो वो चीज हम जरूर जीवन के अंदर पाएंगे ही पाएंगे, और उसके लिए देखने पड़ेगा एक सपना। ऐसा कहा जाता है कि छोटे छोटे सपने देखो, और हम कहते हैं बड़ा सपना देखो और बड़ा आदर्श रखो, क्योंकि बड़ा सपना ही अपना विचार को बड़ा करेगा और बड़ा आदर्श ही हमें बड़ा मनने में मदद करेगा। और सपना देखने के बाद क्या करना है, खरी प्रत्यक्ष करने की लगन रखनी है। कैसे उस सपने को प्रत्यक्ष करें, मगर बहुत बार होता है ये सपना बड़ा होगा मुझसे नहीं होगा करके हम बड़ा सपना नहीं देखते, हम क्या करते हैं छोटे सपने देखते हैं। देखो मुसोलिनी एक गरीब कारागिर था, रोम के राजभवन में राष्ट्रप्रमुख की कुर्सी को वो पॉलिश करता था, बड़ी मेहनत से पॉलिश करता था। तो उसके मित्र ने उसे कहा कि इस कुर्सी को तू इतने मेहनत से क्यों पॉलिश कर रहा है, कहा तुझे उस कुर्सी पर बैठना है। तभी मुसोलिनी ने अपने मन में एक विचार किया कि एक न एक दिन मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा। देखो मुसोलिनी ने जो सपना देखा था वो बहुत ही बड़ा था, वो नामुमकिन नहीं था, मगर उसकी हिम्मत, उसकी मेहनत से और उसके आत्मविश्वास से एक दिन ऐसा आया और मुसोलिनी रोम के राजभवन में राष्ट्र प्रमुख बन के उस कुर्सी पर बैठा। मगर इसका अर्थ यह है कि हम कितना भी बड़ा सपना देख सकते हैं और उसकी उसको प्रत्यक्ष करने की लगन में रह सकते हैं। तो आज से हम क्या करेंगे, बड़े से बड़ा सपना देखेंगे, कोई भी छोटा सपना नहीं देखेंगे। अगर सपना हमारा पूरा नहीं होगा तो भी चलेगा, हम जरूर बड़ा ही सपना देखेंगे और वो बड़ा सपना पूरा करने के लिए हम अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे और उसके लिए हम अपना जीवन का पूरा विचार है, मंथन है, वो एकाग्र करेंगे। और ऐसे बड़े सपने के बारे में, क्योंकि आज इतिहास साक्षी है, जिन्होंने भी बड़े सपने देखे हैं उनके सपने जरूर पूरे हुए हैं। तो हम भी बड़े सपने देखेंगे तो हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। और ऐसे बड़े सपने के बारे में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते, सपने तो वो होते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। धन्यवाद। ओम शांति। ये नए प्रोजेक्ट का पहला ही मेरा प्रेजेंटेशन था और पहली बार लिखा और पहली बार प्रेजेंटेशन किया। धन्यवाद।
बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन संतोष भाई ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद तनुजा बहन जी का। किताब भी बनी हुई है, संतोष भाई आप सबको दिखा रहे हैं किताब। किताब का नाम है,
किताब का नाम है स्वयं प्रेरणा। और इसके अंदर तीन प्रोजेक्ट है, सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं प्रेरणा, संकल्प शक्ति और ये जो मैंने अभी आपको बताया एकाग्रता। अभी मैं ठीक से नहीं बता सका मगर आप इस किताब में डिटेल्स में पढ़ सकते हैं उसको और आप इससे अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए हमारे बीच में आ रही है आदरणीय दुर्गेश दीदी जी, जो भुवनेश्वर से पधारे हैं। आप 16 साल से इस पार्ट से जुड़े हुए हैं। इसके बाद शांताराम भाई जी आएंगे जलगांव से, जो पधारे हैं शांताराम भाई जी।
ओम शांति। मैं लास्ट ईयर भुवनेश्वर से कुछ भाई बहने आए थे, मैं नहीं आ पाई थी, मेरा शरीर अस्वस्थ था। तो उस समय जो सब भाई बहने यहाँ से लौटे उनका अनुभव सुनाए, क्या प्रयोग करेंगे। उससे पहले ही हम सब बात किए थे कि ये जो भाग दौड़ चल रहा है, बहुत सेवा, हर विंग की सेवा। उसके पहले सिल्वर जुबली ईयर था तो हम सब तय किए थे कि 25 बड़ी सेवा करेंगे। तो उसके बाद जो हम कोर ग्रुप भाई बहने दो प्रेजेंटेशन, उसको दो प्रेजेंटेशन सर्विस रिपोर्ट पहले ये ऊपर। तो हम सब उसके बाद और दूसरा प्रेजेंटेशन जी। तो हम सब ये तय किए थे कि ये साल खास मनसा सेवा पर काम करेंगे। हम दो सब्जेक्ट्स तय किए थे जो हमारे संपर्क में थे। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाली माता थी तो हम सोचे थे उनकी सेवा करेंगे, उनके द्वारा उनकी परिवार भी संपर्क में आएंगे। और दूसरी एक मोटर न्यूरॉन पेशेंट थी जो भी संपर्क में है। हम ये भी तय किए कि क्यों हम उन दोनों पर करना चाहते हैं, क्योंकि वो संपर्क में है, हम उनके जो डेवलपमेंट हो रही है उसको हम देख सकते हैं। परंतु ये जो भाई बहने लौटे मीटिंग के बाद, तो एक भाई अनुभव सुनाया, फिर एक दिन फोन किया कि कोई भाई आपसे मिलना चाहते हैं, उनकी लड़की को शायद कैंसर हुई है। तो मैं तो बिजी थी, मैं बोली कि भाई ग्लोबल को लेना चाहते हैं, ऐसे बोले। मैं बोली ग्लोबल में शायद इतनी माना एडवांस ट्रीटमेंट है नहीं, वो तो कर रहे हैं ना कोई, मैंने मैं छुटकारा पाना चाहती थी असली में, जो पैक्ट थी इसलिए। परंतु उन्होंने फिर मिलने के लिए टाइम लिए और आए, और आके जो भाई, जो और एक भाई जो कि डायरेक्टर है हमारी जियोलॉजी, डेप्यूटी डायरेक्टर इन जियोलॉजी एंड माइंस डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने समय लेकर आके मिले और आकर बोले कि हमारी एक लौती लड़की है जो 22 साल की है, लेकिन उसको तो कैंसर, बचपन से ब्रेन में ट्यूमर थी, तो उन्होंने यही बोला। तो हम उनके ऊपर ही सेवा किए, जो मैं वो बोलना चाहती हूँ, और उसके बाद जो स्पार्क एक्टिविटीज हुआ उसके बारे में भी बोलूंगी। लेकिन हम 6 महीना इसके ऊपर प्रयोग किए, तो उस भाई ने आकर हमें उनके बारे में बताया कि जो वो बचपन में, मैंने वो जब 9 साल की थी 2005 में उनको ब्रेन में कैंसर हुआ, तो इट वाज ऑपरेटेड। देन अगेन 2006 में उसमें उनको हुआ, फिर वही जगह में ट्यूमर निकला, तो फिर इट वाज ऑपरेटेड इन वाइजक। फिर 2008 में उसी जगह ब्रेन ट्यूमर हुआ, ट्यूमर आया, तो उसको भी ऑपरेट किया, लेकिन सेकेंड टाइम ये पता चला इट वाज मैलिग्नेंट, तो उसको केमोथेरेपी और रेडिएशन आदि रहा। तो 2008 की ऑपरेशन बाद वो पूरा नॉर्मल थी, लेकिन 2016 फरवरी में उनको पता चला कि वो कुछ ब्रेन स्टेम में ट्यूमर है। सो इट वाज ए केस ऑफ ट्यूमर इन 4th वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन स्टेम। तो इसको तो ऑपरेशन करने की डॉक्टर बताया कि इसको हम छू नहीं सकते हैं, देर इज नो रिमेडी फॉर इट। एंड व्हाट इज द कंडीशन, पेशेंट की क्या हाल है, तो उन्होंने बताया कि अब सबको उनके सामने ही डॉक्टर बोल दिए, तो उनको पता है कि सी इज वेटिंग फॉर डेथ। तो घर में यही हाल है कि हरदम महामृत्युंजय मंत्र चल रहा है, वो सब साई आश्रम की, साई बाबा के आश्रम से वो सब कनेक्टेड है वो परिवार, तो हरदम बाबा की, साई बाबा की भजन चल रहा है, महामृत्युंजय मंत्र चल रहा है। तो जो उसने जब हमको बताए, तो हम उनको पूछे कि आप वो बच्ची को यहाँ ला सकते हो, बोले इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, वो लाना तकलीफ है, तो हम जा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे, इट वाज इन मार्च 28 ऑफ 2016, तो हम उनके पास गए और जो देखे उस समय, वो जो बीमारी है अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस इज एस्ट्रोसाइटमा ग्रेड 1 मैलिग्नेंट। तो उसके बाद शी वाज डिप्रेस्ड, एक साइड जब 2016 में वो डिटेक्ट हुआ वो पैरालाइज्ड हुई नहीं थी, लेकिन उसके बाद पैरालाइज्ड हो गई थी, और उसको हम मिले तो शी वाज डिप्रेस्ड, पैरालिटिक हो गई थी, खाना नहीं खा पा रही थी और सो भी नहीं पा रही थी। तो और वो वेट कर रही थी, क्योंकि उस पहले 3 बार जो ऑपरेशन हुआ उसको वो बचपना थी तो इतनी महसूस नहीं की थी। एंड वो बोली कि मुझे, मैंने जैसे मृत्यु के इंतजार में है और डिप्रेस्ड है, तो हम सब बात किए, तो मैं श्रीकांत भाई को, जब जिस दिन भाई जी उनके पिताजी मुझसे बात किए, तो मैं श्रीकांत भाई से बात की। तो जैसे हम सब पहले से ही तय किए थे कि मनसा सेवा के ऊपर करेंगे, तो उन्होंने बताया कि खुद को, जैसे आप सब मनसा सेवा के लिए करना चाहते हो, तो प्यूरिटी पावर एंड पीस की वाइब्रेशन, जैसे खुद ऊपर जाके बाबा से लेकर फिर उसको सकास देना, और धीरे धीरे। तो इसी प्रोसेस से हम उनके साथ जो गए, उनसे मिले, मिलने से फिर धीरे धीरे उनमें, तो हमारे जो टीम है भाई बहनों के साथ मिलकर हम ये प्रयोग शुरू किए, एक टीम उनके पास जाना शुरू किए, और उसको धीरे धीरे उनमें जो परिवर्तन आया कि एक आस, भरोसा आया कि कोई मेरे बात सुन रहे हैं। फिर उसको धीरे उसके प्रति हम सेंटर में रोज सामूहिक इसी तरीके से एक कॉमन कमेंट्री में हम योग कर रहे थे, और उसके पास जाकर के भी उसको इसी बहाने उसका सुनते थे, उसको सुनाते थे, फिर उसी बहाने उसको कोर्स भी दिया गया। कोर्स के बाद ये कमेंट्री के साथ उसको उसके साथ भी हम योग करा रहे थे। और उससे क्या हुआ, जब परिवार में और उसमें भी बड़ी हिम्मत आ गई, जो इतनी और जो भाई बहन हमारे साथ जाते थे उसको फिजियोथेरेपी भी करा रहे थे, एंड सी हैड केप्ट द डेट कि बाय 4th June आई शुड बी ऑल राइट। तो उसी बहाने भाई बहने उसको एक्सरसाइज करा रहे थे, और मेडिटेशन भी हम किए, कोर्स भी करने के बाद मुरली सुनना शुरू की, फिर धीरे धीरे क्लास आना शुरू की। शी वॉज नॉट एबल टू वॉक, बट जो भाई बहन उनके पिताजी के सहारे से वो रोज क्लास आई, क्लास में मेडिटेशन भी की और मेडिटेशन करने लगी। और क्लास के बाद हमारा एक्सरसाइज होता है, फिजिकल एक्सरसाइज, उसमें भी पार्टिसिपेट करने लगी। तो उसमें एक मैंने वो चेंजेस आने लगी, जिस दिन पहले हम सब गए थे उसी दिन उसकी रिपोर्ट ये थी कि वो सो सकी, उसको नींद अच्छी आई, और तब से लेकर सी हार्ड ए कंटिन्यूअस साउंड स्लीप, उसको नींद में और कभी तकलीफ नहीं हुई। फिर एक भोग के लिए जो भोग लगाने की विधि भी पता चला, तो उनके घर में हम बीच में 21 दिन भोग लगाए, और सेंटर में भी आएगी तो जरूर भोग खाएगी। तो फिर धीरे धीरे वो बोलने लगी कि अभी पहले, क्योंकि ये जो बोलते हैं कि ब्रेन स्टेम की ट्यूमर होने से इट अफेक्ट्स द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो उसका खाना नहीं निकलता था, तो धीरे धीरे भोग में भी वो बोल सकती थी अब इस गुरुवार ये भोग बनाना, और धीरे धीरे बोलती थी कि अभी ये निकलती है। उसके बाद उसमें जो जो कलाएं हो है वो बहुत मैंने आर्टिस्टिक थी, सिंगर थी, गीत गाई, और वो कैशियो भी भाई बहन ने प्रेरणा देते थे, अभी कैशियो हमको भी सिखाओ, तो सीखती थी, सिखाती थी, और क्लास में भी उसकी परफॉर्मेंस देने लगी। उसकी बर्थडे हम ऐसे 4th June को उसकी बर्थडे थी, तो इसलिए वो चाहती थी कि आई शुड बी ऑल राइट बाय दैट डे, तो इसलिए तो 4th June को हम बर्थडे, लेकिन क्यों कैसे बर्थडे, वो बोली थी हम लास्ट ईयर बर्थडे में एक अनाथ आश्रम में गए थे, हम बोली वही बात, भुवनेश्वर में जितनी अनाथ आश्रम है सबको हम 4th June में इकट्ठे किए थे, 26 बच्चों को, प्राय 300-350 बच्चों वो सेंटर में इकट्ठे हुए थे, एंड 4th June हम एक टॉपिक रखे थे जो इनर स्ट्रेंथ ए गॉड्स गिफ्ट, उस टॉपिक के ऊपर कार्यक्रम किए, और इनडायरेक्टली उसकी बर्थडे भी उसी दिन सेलिब्रेट किए। तो उसको उसी दिन उसकी बर्थडे था, जो हमारे गेस्ट थे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स की, चाइल्ड एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो मेंबर सेक्रेटरी थे और कुछ भाई बहने थे, तो ऐसे उनकी उसमें वो उमंग आने लगी, चेंजेस आने लगी। डॉक्टर अभी कंफ्यूजन में पड़े, शायद वो ब्रेन स्टेम में ट्यूमर है नहीं, वो ट्रीटमेंट में, लेकिन 25th June को वो ओवर एंथुजियास्टिकली सेंटर से घर लौटी और गिर गई, तो उसमें उसकी ब्रेन में फिर क्लॉट आ गया, तो कुछ दिन हॉस्पिटलाइज हुई। फ्रॉम 25th June शी वॉज हॉस्पिटलाइज एंड शी वॉज इन ICU फॉर 10 days, ICU में 10 दिन रही, फिर हॉस्पिटल में रही, एंड जून 25th तक, जून महीना के एंड तक वो वापस घर में गई, परंतु उस तक भी उसमें भी वो कोशिश कर रही थी, शी वॉज रेस्पॉन्डिंग, हर बात को रेस्पॉन्ड कर रही थी, और धीरे धीरे उसमें भी वो डेवलपमेंट होने लगी, जो उसको फिर बीच में जिद कर रही थी और बाबा को याद नहीं करूंगी ऐसे बोल रही थी, फिर बोल रही थी अब कुछ गीत लगाओ, और क्योंकि जब हॉस्पिटल में आफ्टर जो ब्रेन में क्लॉट हुआ उसमें वेंटिलेटर में रखा गया, उससे मुझे तो ऐसे लग रहा था शायद उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके लिए डॉक्टर उनको सीधा वेंटिलेटर पे ले गए, परंतु वो ट्रीटमेंट की ही शैली होंगी। और धीरे धीरे वेंटिलेटर के बाद ट्रैकियोस्टोमी हुई, वो बात नहीं कर सकी, घर वापस आई, लेकिन शी वॉज डिमांडिंग, बहन जी को बुलाओ। और आप फिर आके वो बोली कि उसकी जो उस चीज समय भी उसकी जो नेचुरल जो यूरिनेशन आदि आदि पहले से ब्लॉक हो गई थी, स्टूल पासिंग हो नहीं रही था, लेकिन ये सब धीरे धीरे सब ठीक हो गया था। तो उसको जब घर में ला गए तो उसको इंटरेस्ट हुआ, धीरे धीरे उनको लाके माना व्हील चेयर में भी बगीचे में घुमाते थे। तो एक हमारे साथ एक डॉक्टर भी जो मेडिटेटर है, राजयोगी है, वो भी जोड़ के उसको बहुत माना देख रहा था उसकी हर स्टेजेस को ऐसे अच्छे तरीके से। मैंने इन सितंबर अगस्त मिड वो फिर डिमांड की कि बहन जी को बुलाओ, बहन जी फिर कोर्स कराएगी। तो भाई उनकी परिवार के बीच में फिर 7 दिन की कोर्स हुआ। 6ठा दिन की कोर्स के बाद 7वां दिन आई मेट विथ एन एक्सीडेंट। तो मैं फिर बिस्तर में रह गई, तो मैं जा नहीं सकी, बट शी वॉज आस्किंग कैसे है बहन जी बोल के, क्योंकि बोल तो नहीं सकती थी, सब इशारा करके बोलती थी। एंड सितंबर 5th में मेरी एक्सीडेंट हुआ, एंड कोई दूसरी बहन जाकर के 7th डे कोर्स कराई, तो वो बोली नहीं फिर उनको आने दो, मुझे माँ बुलाती थी आने दो। परंतु सितंबर 15th में उन्होंने शरीर छोड़ी रात को, विदाउट एनी पेन, विदाउट गिविंग एनी सिम्टम। उसी समय भी डॉक्टर्स आकर के देखते थे और उसकी जो डेवलपमेंट हो रहा था, फिर वो कंफ्यूज हो रहे थे कि शायद ये प्रॉब्लम जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं, ये ब्रेन स्टेम की ट्यूमर नहीं, उसको जो कैंसर के टाइम रेडिएशन दिया गया था, शायद इट इज एन इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन एंड ये अच्छी हो जाएगी। और उसकी मौत भी बड़ी मना एक आश्चर्यजनक हुई, मौत तो शरीर छोड़ी एंड आफ्टर 24 आवर्स भी उसकी शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया था। इसलिए शरीर को ले जाने से पहले तो उनको फिर डॉक्टर को बुलाना हुआ, तो देखे कि वो उनको जो रेस्पिरेशन देखते हैं, सैचुरेशन देखते हैं, ब्लड प्रेशर, वो सब फिर थोड़ा दिख रहा था। तो इसीलिए डॉक्टर आए, फिर चेकअप किए, बोले कि शायद हर सभी सेल डेथ नहीं हुआ। तो फिर उन लोग फैमिली की ये मान्यता है कि वो फिर आश्रम पर, क्योंकि उस समय मैं बेडरिडन थी, तो उनको आश्रम पर ले आया गया और उसको संस्कार के लिए लिया गया। तो उसके उसमें परिवार में भी जो वाइब्रेशन था जब हम वो केस को लिए थे एंड जब वो शरीर छोड़ी, उसमें बहुत परिवर्तन था। तो उसके बाद मैं पूछी सबको कि क्या इज इट ए फेल्यूर ऑफ द प्रोजेक्ट। भाई बहने तो बोले नहीं, और उनकी परिवार वाले भी बोले कि नो इट इज नॉट द फेल्यूर, ये एक सक्सेस रहा, क्योंकि जो हमको जो सब्जेक्ट मिला वो बाबा हमको सब्जेक्ट लाके दिया, और उस सब्जेक्ट में जो परिवर्तन आया वो जैसे बहुत पार्टिसिपेट कर रही थी सेंटर की एक्टिविटीज में भी, तो उनमें परिवर्तन होने के साथ साथ उसकी परिवार में भी परिवर्तन हुआ। और इससे जो प्रेरणा मिली, और वो उसकी घर में भी जो उनकी अंत्येष्टि की कार्यक्रम में सत्यसाई सेवाश्रम की भाई बहने भी वो जिगर किए, नहीं हम उन महानुभवों से अनुभव सुनना चाहते हैं कि जो उनको पूरा साथ साथ पालना देके उनको ऐसे अच्छी मृत्यु दिलाने में निमित्त बने। तो ऐसे और एक भाई जो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी उसके साथ पूरा जोड़ के रहे हुए थे इस कार्यक्रम प्रोजेक्ट में, तो उन्होंने ये बताते हैं, तो उसमें यही पता चला कि अभी बहुत सारी केसेस ऐसे आता है, तो सब में ये तो सबके पास तो आता है ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, लेकिन ये हिम्मत आ गई कि हमको कंटिन्यूअसली एक वाली एक स्वरूप में एक कमेंट्री के आधार से, सामूहिक योग के आधार से यही माना परिवर्तन हो सकता है, हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो जो स्पार्क एक्टिविटीज के बारे में हम हर महीना के फर्स्ट रविवार हम बैठते हैं, लास्ट महीना जो किए हैं उसको इवैल्यूएट करते हैं, और उसके बाद जो आगे करेंगे उसके लिए चेकआउट करते हैं। तो इस बार तपस्या मास की अंत में हमको ये सौभाग्य मिला कि हमारे बीच में स्पार्क विंग की एक्टिविटीज होने के लिए भाई बहने भुवनेश्वर में पहुंचे। तो 27 जनवरी को हम एक भर्ती किए थे, सर्विस थ्रू माइंड द नीड ऑफ द आवर, मनसा सेवा जो ये समय की आवश्यकता है। तो इसमें बहुत भाई बहने शामिल थे, प्राय 400 भाई बहने, और उसमें खास करके बीके बालाकिशोर भाई हैदराबाद का, मुकुल भाई पुणे की, और रंजनी बहन चेन्नई के, वो सब पहुंचे थे और बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम भट्टी से सबको लाभ मिला। तपस्या महीना की जो जनवरी मास के अंत में ये रहा, और एक सेवा कार्यक्रम था, पब्लिक प्रोग्राम था, उसी बहाने सेंटर में ऑन 26 जून क्रिएट स्पिरिचुअल स्पेस इन लाइफ, प्राय 300 भाई बहने इंटेलेक्चुअल्स जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जो स्पेस स्पिरिचुअल स्पेस की एक गहन अनुभूति करने को भाई बहनों को सौभाग्य मिला था। इसके साथ साथ जो कुछ समय से हम प्रयास कर रहे थे, उड़ीसा में एक ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, उसमें कोई कार्यक्रम करे तो उसमें कॉन्टेक्ट करके ये भाई बहनों की उपस्थिति में हम वहाँ भी एक कार्यक्रम किए, ए मेडिटेशन रिट्रीट एम्पावरमेंट थ्रू अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, उसके ऊपर नाइजर में भी एक प्रोग्राम रहा जिसकी कुछ फोटोज है। ऊपर में जो फोटो है वो हमारी सेवा केंद्र में जो क्रिएट स्पिरिचुअल स्पेस इन लाइफ, जिसमें एम्स की एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट थे डॉक्टर शाहू जी, और रजिस्ट्रार ऑफ नाइजर डॉक्टर ए के नायक अभय कुमार नायक भाई जी हमारी मुख्य अतिथि रूप में थे, और नीचे बाएं तरफ में जो है उसमें वो नाइजर में डायरेक्टर एंड रजिस्ट्रार के उपस्थिति में उसके उद्घाटन हो रही है। और नीचे और दूसरी जो फोटो है 27 जनवरी को जो भर्ती हुई थी उसकी फोटो है। बहुत बहुत धन्यवाद हमको सहयोग दिए इस सेवा समाचार सुनाने में। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दुर्गेश दीदी का। अभी मैं इनवाइट कर रही हूँ शांताराम भाई जी को जो जलगांव से पधारे हैं। आप स्पार्क में शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं, जलगांव लोकल चैप्टर जो स्पार्क की जो एक्टिविटी चलती है आप जलगांव में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो अभी हम सुनेंगे।
ओम शांति। जलगांव लोकल चैप्टर के हम 18 साल से आदरणीय रमेश भाई जी ने हमको लोकल चैप्टर परमिशन दी है। 18 साल में 18 प्रोजेक्ट्स हमने किए, अभी टाइम नहीं उतना बताने को, लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट, एंजेलिक लाइफस्टाइल, बॉडीलेस स्टेज, हर हीलिंग, अभी क्या बताओ, हर साल हम अलग अलग प्रोजेक्ट लेते हैं। अभी खास इस वर्ष में जो कर्मयोगी स्थिति योग के प्रयोग, आदिन सूरज भाई जो कोऑर्डिनेटर हैं, इनके मार्गदर्शक, इनके मार्गदर्शन से हमने जो इस वर्ष में काम किया है, तो पहला हमने जलगांव में एक लाइफ मेंबर, 35 मेंबर है लाइफ मेंबर स्पार्क विंग के, हमारे रेगुलर फर्स्ट और थर्ड संडे को 5:30 से 8 बजे तक भट्टी कहो, वर्कशॉप कहो, मीटिंग कहो, हम रेगुलर पहला तीसरा रविवार को मीटिंग लेते हैं नियमित रूप से सभी स्पार्क में। अच्छा, और विशेष बात, हमारे जोन इंचार्ज मीनाक्षी दीदी, उनका हमको बहुत अच्छा सहयोग है। वो खुद बोलती है, शांतराम भाई तुम्हारे स्पार्क वालों को वहां भेजो, वो कोई सीरियस है, तुम आयोग पर प्रयोग करो, ऐसे हमको निमंत्रण भी आते। तो ज्यादा टाइम में लेकर के जैसे ज्ञान सरोवर से इस प्रोजेक्ट के लिए रुपेश भाई द्वारा आपको मिले, आपकी मिलती होंगी जो आज की प्रेरणा रेगुलर मिलती है हर दिन की, आज की प्रेरणा आपको मालूम होगा, तो उसकी झरास कॉपी हम निकालते हैं सभी स्पार्कलर को, स्व पुरुषार्थ के लिए हम वो कॉपी हर महीने में देते हैं। और डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी क्योंकि समय की सीमा है। तो जैसे कि 15 पहले हम क्या करते हैं, यहां से जब प्रोजेक्ट प्रपोजल ले जाते हैं ना, अभी जैसे मनजीत जगजीत ले जाएंगे समझो, तो यहां से जाने के बाद हर समय हम क्या करते हैं, सभी जोन जगह सब जोन की जितने बहने टीचर्स बहने यहाँ टीचर बहने बैठी है, तो जो अपने मीनाक्षी दीदी है सब जोन इंचार्ज, उनकी अध्यक्षता में सभी टीचर्स बहने स्पार्क के जो मेंबर्स है जिनके इंटरेस्ट है, ऐसे 150-150 भाई बहने आते हैं, वो विशेष मीटिंग उनको हम ये जानकारी देते हैं, बौद्ध भवन का समाचार मीटिंग का आज का समाचार, ये मीटिंग चलती ना इसे समाचार हम सुनाते हैं, और सबको जो भी भाग लेते हैं उनको हम प्रोजेक्ट की जेरोस कॉपी स्टडी के लिए देते हैं। तो 15-5-16 उस दिन जो वर्कशॉप हुई उसका हम सिर्फ ही विषय बताएंगे, क्योंकि बाकी डिटेल में हम आपको एक किताब है इसमें आपको सब डिटेल मिलेगा, मीटिंग में क्या हुआ ये सब डिटेल मिलेगा, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो 15 मई को वो विषय था वर्कशॉप का, कर्मयोगी बनने का अंतिम पुरुषार्थ समझ लेना अर्थात क्या, कर्मयोगी बनने की सिस्टमेटिक स्थिति कौन सी है, रचनात्मक बीके जीवन प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से पुरुषार्थ पर कौन सा ध्यान देना है, इन विषयों पर वर्कशॉप चला। रविवार दिनांक 3-7-16 हर कर्म करते कर्मयोगी स्थिति का प्रयोग व अभ्यास, इसमें हमने जो पार्टिसिपेट थे तो उठने से सोने तक हर समय हम कर्म करते, कर्म के बिना एक सेकंड नहीं रहते। तो जो खास कर्म है प्रातः उठते ही भोजन करते समय सोते समय चलते समय ऐसे हम 21 खास मुख्य बातें है ना, कर्म प्लस योग, शरीर प्लस आत्मा, शरीर अलग आत्मा अलग, समझो क्या हो गया। तो कर्म योग, तो हर कर्म करते समय कर्म की स्थिति का प्रयोग अभ्यास हमने 21 पॉइंट निकाले दीदी, 21 पॉइंट सबको वो कर रहे हैं सर। फिर रविवार दिनांक 10-7-16 ब्रह्मा कुमारी हमारी एक स्पेशल गीता पाठशाला है सेंट्रल बैंक कॉलोनी में, वहां 3 घंटे सभी स्पार्कर आए थे। तो लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तो 20-20 मिनट स्पेशल जैसे सेटिंग कर दी मन की सेटिंग, 20 मिनट ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, आराध्य स्वरूप, ऐसे हमने भट्टी रखी थी खास। नंतर जिसके बाद रविवार दिनांक 13-23-10-16 बाबा के इस समय के सीजन की पहली अव्यक्त वाणी, क्या इशारा दे बाबा ने, ओम शांति शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक कर रहना अर्थात किस स्मृति स्वरूप में स्थित होना, जावे त्याचा वंशी तेव्हा कडे, सुनवाड़ समझते होंगे। तो उसमें हमने 3 बाबा के जो हेडिंग है ना मुरली का, आप देखो समझ जाएंगे। तो मन का डांस अर्थात क्या, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, डांस हो गए ना भाई, डांस हो गए ना 5 स्वरूप का। तो मन का डांस अर्थात क्या, उसका अनुभव कैसा करे, सभी ने अपना अपना अनुभव बताया, मैं वो नहीं बता सकता आपको क्यों टाइम नहीं है ना। मन का मौन अर्थात क्या, मन भटक रहा है मौन है, मन का मौन मुख का मौन नहीं, मन का मौन अर्थात क्या, उसका अनुभव कैसा करे, सबने एक्सपीरियंस बताया। तीसरा आवाज से परे उपराम, बाबा ने मुझे बताया, मैंने नहीं बताया, बाबा ने बताया, आवाज से परिस्थिति अर्थात क्या, उसका अनुभव कैसा करे, ये हमने सब्जेक्ट विषय लिए थे, इस पर वर्कशॉप, इस विषय पर वर्कशॉप चली, वो क्या चली तो वो आपको एक पुस्तक मिल जाएगा कैसे चली। उसके बाद था प्रश्न वर्कशॉप का विषय वायुमंडल, ये बस बाबा की बात है हेडिंग की उस मुरली की, वायुमंडल में शांति की किरणें फैलाने की विधि क्या है? विनय भाई आपको मालूम है इस विधि? वायुमंडल में शांति की किरणें फैलाने की विधि से सिद्धि क्या है, इसका प्रयोग कैसा करें? क्वेश्चन मार्क। रविवार दिनांक 4/12/16 वृत्ति द्वारा वायुमंडल परिवर्तन की सेवा, कितनी अच्छी सेवा है। संकल्प से बनती वृत्ति, वृत्ति से बनता वायुमंडल। तो पहला विषय था वृत्ति कैसी बनती है, मैंने आपको बता दिया, आपको मालूम है वृत्ति अर्थात क्या। अभी इसमें हमने निगेटिव पॉजिटिव वृत्तियां 60-60, 60 निगेटिव वृत्तियां 60 पॉजिटिव वृत्तियां उसमें मिलेंगे आपको। कौन सी आप समझ जाएंगे? प्रसन्न, हर्षित, ये पॉजिटिव, उदास, नाराज, निगेटिव, ये 60 वृत्तियां निकाले हमने। निगेटिव कौन सी है? हाँ, वृत्ति किस प्रकार की होती है? तो प्रधान और सत्पान वृत्ति के नाम उदाहरण सहित स्पष्ट करो। उसके बाद जो आत्मा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहती है, जो आत्मा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहती है उनकी निशानी क्या होगी, बताओ आप। 4 उसके आगे, वायुमंडल को शुद्ध सत्वप्रधान शक्तिशाली बनाने की विधि कौन सी अपनाएंगे? अभी रविवार दिनांक इस बहुत लगे हमने बहुत शॉर्ट लिया है, हर मीटिंग होती है हर तीसरा रविवार दिनांक 18/12/16 जो रिलेटेड पॉइंट है अपनी जो प्रोजेक्ट से, कर्म योगी सो फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ। प्रेरणा क्या है इसमें? वरदान, बाबा का रोज का वरदान। तो वरदान है 17/12/16 का वरदान क्या था मालूम है? देखो हम स्पार्क वाले को, जलगांव वाले को अभ्यास हो गया है, क्योंकि बाबा ने बताया कि हर रोज का वरदान, आज का जो वरदान दिया बाबा ने, तो ये वरदान का अभ्यास अगले दिन अमृत वेला उसी स्थिति में वरदान तोंडी पाठ नहीं, तो आज का वरदान दूसरे दिन उसी स्थिति में उसका अभ्यास करना, ऐसे बाबा ने बताया। तो वो होमवर्क हम करते हैं, तो कहने के बाबा तो वरदान था उस दिन, डबल लाइट वन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। अभी आप जानते हैं 8 दिन से 9-10 दिन से रोज कर्मयोगी आता है ना मुरली में, थैंक यू। तो उसमें डबल लाइट स्वरूप अर्थात क्या, स्पष्ट करो। कर्मयोगी से कर्मातीत स्थिति की निशाना कौन सी है? कर्मयोगी से कर्मातीत, सूरज भाई ने हम क्लास कराया था जो प्रोजेक्ट दिया था तब, उसका बेस हमने लिया था। उसके आगे कर्मयोगी सो प्रयोगी स्थिति की परिभाषा क्या है, परिभाषा। उसके बाद कर्मयोगी सो कर्मातीत बनने के लिए किन किन बातों से मुक्त होने की जरूरी है, ये बाबा की स्पेशल अव्यक्तवाणी चलिए, उसमें बाबा ने 18 बातें बताई। व्यर्थ से मुक्त, रोने से मुक्त, बहुत बातें अभी हम नहीं बता सकते, बाबा की वाणी चलिए स्पेशल। डबल लाइट फरिश्ता, डबल लाइट रहने के लिए किन बातों पर ध्यान देना है, इस विषय वर्कशॉप चला। अभी लास्ट है 15/1/17 अव्यक्त संदेश के इशारे प्रमाण स्पिरिचुअल गेम। अभी हमने किया है ना स्पिरिचुअल गेम, हमने मैंने बताया कि हमने आज सब जोन इंचार्ज मीनाक्षी दीदी के अध्यक्षता में हमने 45 मिनट्स सब दीदी ने अनुभव बताया, जोन इंचार्ज मीनाक्षी दीदी ने अनुभव बताया कि हम जैसे कि यहां नहीं थे, सभी ने कि हम जैसे कि सूक्ष्म वतन में थे। दीदी ने बताया, हमारे दीदी ने, कि टाइम कैसे चला गया हमको मालूम ही नहीं पड़ा, बोले 1 घंटा कैसे चला गया। तो स्पिरिचुअल गेम यहां तो बड़ी सभा और खास बात, आमदार नहीं खासदार, खास बात यह है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल कर्मयोगी स्थिति से स्थिति और योग के प्रयोग, ये आपको मिलेगी स्पार्क ऑफिस में या वहीं रखेंगे, इसमें सब डिटेल में और बाबा के 1969 से आज तक जो इस विषय रिलेटेड महावाक्य है उसका संकलन, एक्सेस 187 पॉइंट्स पैराग्राफ कहो इसमें है। भगवान वाच है इसमें।
बहुत बहुत धन्यवाद
है ना। हाँ, लास्ट बात बता दूं कि हेडिंग है, हमने लिखा है इस पुस्तक में, स्वयं पर और सर्व पर, स्वयं पर और सर्व पर दया करने का उपाय, एक बाबा की याद, याद दया। तो इस मैंने बाबा के खास, तो सिर्फ 1 अगस्त से 31 अगस्त, 1 महीने की मुरली दीदी करने का ये। कहने का सारे है, अगस्त महीने में बाबा ने जो व्यक्त मुरली उसमें जो पॉइंट दिए याद के इशारे, तो उसमें 150 पॉइंट सिर्फ 1 महीने में निकले। तो आप बाबा 80 साल से बता रहे थे कितने पॉइंट निकले होंगे याद के लिए इशारे। हाँ, श्रीकांत भाई बोल रहे हैं। तो आपको खास निमंत्रण है, भाई जी की याद आती है, रमेश भाई जी, रमेश भाई ने कम से कम 2 महीने पहले हमने अर्जी की थी, तो रमेश भाई ने बहुत हमको ग्रीन सिग्नल दिया है उस समय। और आदरणीय अंबिका दीदी से कभी सब है कि भाई जी की जो आशा है हमको पूरी करनी है, तो भाई जी ने हमको जलगांव में वो भट्टी रखने का, सारे भारत की, आप जो यहाँ बस सर्विस भारत के मेंबर स्पार्क क्लर्क बैठे साइंटिस्ट पीछे आप सबको निमंत्रण है। उसके डेट 22 मिली हमको, श्रीकांत भाई से बताया है, अंबिका दीदी को बताया, हमको 26 से 31 मई ये डेट हमको वहां जगह एज लाइक ज्ञान सरोवर स्पॉट है, इंटरनेशनल कंपनी जलगांव में, जैन ब्रदर्स आप जानते होंगे उनका एज लाइक ज्ञान सरोवर स्पॉट है, वो अनुभूति स्कूल है, उन्होंने हमको छुट्टी दी है भाई 26 तारीख से 31 मई तक। तो शायद प्रोग्राम अभी श्रीकांत भाई अंबिका दीदी बैठकर जो उनका यदि ये पोस्टपोन हुआ तो अक्टूबर में ये जरूर हो सकता है। तो आप सबको हार्दिक निमंत्रण है, आप जलगांव के योग भट्टी और वहाँ कॉन्फ्रेंस भी होगी पीएचडी डॉक्टर्स लोगों की, ये आपको भी हार्दिक निमंत्रण है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शांताराम भाई जी का, जिन्होंने हम सबको अलौकिक खेल द्वारा योग भी कराया, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन भी दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि टाइम की सीमा है, अभी 7-5 मिनट के लिए एक प्रेजेंटेशन होगा, मैं इनवाइट कर रही हूँ आदरणीय प्रदीप भाई जो दिल्ली से पधारे हैं, तो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो आप सबको समझ में आ रहा है ना प्रेजेंटेशन, लोकल चैप्टर प्रेजेंटेशन जो ये सेशन यहाँ पर रखा हुआ है वो हम सबके लिए यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि हमको क्लैरिटी हो, हम सबको प्रेरणा मिले और हम अपने अपने स्थानों पर जाकर के यहाँ पर जो पहले से लोकल चैप्टर चल रहे हैं उन्होंने क्या वर्क किया है तो हमें समझ में आकर के फिर हम अपने स्थानों पर जाकर के कर सके। तो हम अभी सुनेंगे प्रदीप भाई से। इसके बाद ब्रेक होगा और सबको टोली भी मिलेंगी और चाय के लिए दिव्य लोक में सभी प्रस्थान करेंगे।
ओम शांति। इसको ऑन अभी नहीं करना, स्टिल ओम
स्पेस बार दबा दीजिए, आपको जब करना है तो दबा
दीजिए। ओम शांति। मैं दिल्ली एनसीआर जोन की तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन पेश कर रहा हूं, उसमें थोड़ा ब्रीफ है कि हम उस क्षेत्र में क्या क्या सेवाएं कर रहे हैं और नियर फ्यूचर में 2017 में और क्या क्या सेवाएं हम करने जा रहे हैं, और हमने दिल्ली एनसीआर जोन के अंदर अपना स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, ये सब थोड़ा ब्रीफ के अंदर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। उसका छोटा सा डीवीडी बनाया है, उस डीवीडी बनाने का भी एक मकसद है जो कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन के बाद आपसे शेयर करूंगा। प्रेजेंटेशन बाय बीके स्पार्क सर्विस विंग दिल्ली एनसीआर जोन। द प्रेजेंटेशन इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, ए कंटिन्यूड सेवाज एंड प्रोडक्ट्स इन हैंड, B. Spark self-awareness programs and work in progress, C. CSR and new SIG value skills development initiative, and D. Calendar of events 2017-2018. Project 1. Effect of Raj Yoga on physiological, psychological and cognitive functions. This program was conducted in association with DRDO wings, DIPAS, DIPR, INMAS and SPARK RERF. The duration of the program was 90 days and the participants were 120 divided into three groups. The tools implemented were EEG, ECG, BP and assessments. Results: blood pressure reduction, better cardiac function, heart rate variability, improved ability to bounce back, skin conductance, better relaxation and rejuvenation, significant improvement, relaxed wakefulness. Cognitive results: memory, attention, concentration all improved. Project 2. Raj Yoga Meditation as Mode of Cognitive Intervention Pilot Project. Again in association with INMAS, Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences. Duration of the project was 1 month. Number of participants 18. The method implemented were EEG during 5 minutes open eye testing, 20 minutes duration meditation and 5 minutes video presentation. The theta represents deep level relaxation, anxiety, stress and neurosis, long term memory and ability to focus. Project 3. Neural correlates of well-being in long term Raja Yogis. In partnership with INMAS, tools used EEG, ERP, fMRI. Results: as compared to normal urban population, senior BKs with more than 10,000 hours yoga have greater positive feelings, lesser negative feelings, more satisfaction in life, higher psychological well-being, lesser mind wandering, better cognition, increased brain stability, less ruminative thoughts and mediators. Decreased DMN activity is indicative of a better cognitive process. Project 4. Effect of Raj Yoga Meditation in Spinal Injuries Patients Pilot Study. It was in association with Indian Spinal Injury Center, New Delhi. The duration of the project was 6 months. Number of participants were 325 patients. Method: meditation and 7 days course. Result: better pain control, reduction in anxiety in the patients. Now I move on to the second part of our presentation, which is Spark Awareness Programs. Three major seva programs are conducted. One, three meetings in different sub-zones within Delhi covering different BK centers. Approximately 125 BK sisters and brothers participated in these meetings. The agenda of the program was sharing Spark Wing objective and its services for BKs and non-BKs. Second, a talk by Brother Neville Hutchinson. The topic was "You Are Not Your Brain," and the participants were around 50 researchers and academicians benefited a lot. Third project was Sava Purusharth project called अनादि गुणों की अनुभूति द्वारा परिवर्तन, सेवन ग्रुप्स वन फॉर ईच वर्च्यू, वन ग्रुप वन वर्च्यू वन मंथ, सेवन हर्ट्स फॉर एक्सपीरियंसिंग ईच वर्च्यू एट करनाल स्पिरिचुअल कार्निवल वर्ल्ड प्लेस्ड। नाउ द वर्क इन प्रोग्रेस, वन स्पिरिचुअल वेलनेस सेंटर, सेकेंड स्पिरिचुअल जेनेटिक्स एंड द थर्ड प्रोजेक्ट विच इज अ रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बीके स्पिरिचुअल स्केल is a very innovative and dynamic program being organized by Delhi Sparklers in association with non-BK senior researchers. The theme of the project is BK lifestyle impact on the society. Moving to the third part of our presentation is Spark CSR activities by Delhi Spark team. Spark CSR and SIG BK value-based skills calendar of events 2017-2018. CSR activities planned and submitted for IICA, Ministry of Commerce, Government of India for their approval. CSR training and workshop for BKs, March 2017 ORC Manesar, April 2017 Bangalore, May 2017 Bhubaneswar. CSR Regional Conference, June 2017 ORC Manesar. CSR Annual Conference, we plan to have a CSR Annual Conference on the lines of SARP Annual Conference at Gyan Sarovar within the month of September 2017. New initiatives, SPARK SIG BK Value Skills Development Programs, Program Phase 1, Job Success Program is related to employability skills to be developed among the students. The duration of the program is 25 hours. Objective of the program is to develop job approach preparing for selection process for employment. Second program is Youth Self-Expression and Leadership Program, which is a social project-based program, and the duration is 2 months, 75 hours program. There is a demand from the corporates now that the applicant, the candidate, should be able to work in teams and can take on the project-based initiatives of the organization. And the third program is BK teachers training on both the programs. Third program is in the phase 2 is value skills training for educational institutions faculty. All the programs are to be embedded with Raj Yoga and Baba's Gyan. New initiative being taken is Spark BK Interfaith Dialogue in association with the Interfaith Foundation of India. Spark dialogue on interfaith with top scholars, educationists and researchers in the country proposed at ORC in Gyan Sarovar. In addition to the above Spark projects, we are conducting various programs in partnership with different wings. Spark project with ORC on impact of Raj Yoga on youth empowerment. Spark project with Transport and Travel Wing Mumbai for locomotive drivers. Focus team formation. Another step that we have taken in order to have a very effective and result-oriented projects and programs, we have formed two teams, CSR and a second team, the BK Value Skills Development Program. CSR, Research and Development Team will content and government policies, marketing, company profile CSR policies, concerned persons and BK contacts, back-end operations, proposals, preparations and reporting. Project execution teams will be formed by the concerned BK centers who wish to execute and implement various CSR programs in their area. BK Value Skills Development Program Teams. Program Content and R&D and Designing. BK Gyan Content Research Team. Marketing, Delivery, Back-end Operations and Teachers Trainers. Dear Divine Sisters and Brothers, all our projects and initiatives are socio-spiritual based, and we very strongly believe in collaborative approach. We invite your valuable suggestions and views on working together with us on various research projects, CSR and value skill projects and initiatives. Dear Divine Brothers and Sisters, with the divine blessings of our beloved Ramesh Bhaiji, daily answer zone teams are performing under the able guidance of zone head, BK Saroj Didi, well supported by our national coordinator B.K. Ambika Didi and headquarter coordinator B.K. Shrikant Bhai, without whose support we would not be where we are today and where we are heading tomorrow. Delhi Sparklers team researched B.K. Sushil Bhai, B.K. Ekta Bhan and other Sparklers sisters and brothers, Prashart and awareness programs B.K. Ekta Bhan, B.K. Vinash Bhai, B.K. Samina Bhan, B.K. Mansi Bhan, B.K. Seema Bhan and Kanishk Bhai, DRDO, Garishma Bhan, DRDO, supported and guided by Sushil Bhai with other Sparkler sisters and brothers. CSR and SIG, B.K. Value Based Skills, B.K. Pradeep Bhai, B.K. Prachi Bhan, B.K. Chaya Bhan, B.K. Chandrani Bhan, in addition to non-B.K. advisors, Professor M.M. Verma and Shri C.S. Nair. Om Shanti. ओम शांति. हालांकि हमने एक जो फॉर्मेशन करी हुई है टीम्स की अपने अलग अलग एरियाज और सेवाओं के लिहाज से, फिर भी हम सब पूरी टीम जो है, जो कोर टीम है, हम सब मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं. लेकिन जो फोकस टीम है, दैट फोकस टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम एंड द रिजल्ट्स दैट वी आर एक्सपेक्टिंग. इन सेवाओं के अलावा ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इस प्रोग्राम इसमें शो में मेंशन नहीं रहे डीवीडी में. ओवरसी भट्टी ऑर्गेनाइज की गई थी मई 16 में, 150 स्पार्कलर्स और 100 नॉन स्पार्कलर्स हैड पार्टिसिपेटेड. इज द फर्स्ट टाइम कि एक रीजनल सर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी इन द मंथ ऑफ नवंबर 2016. 450 गेस्ट और साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड एकेडमिशियंस एंड इंक्लूडिंग इंटरनेशनल गेस्ट were present, which was a great success. और इसमें पहली बार हमने ये किया था कि normally क्या होता है कि हम conference करते हैं लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं. Invite करने में तो हम लोग बड़े तेज हैं और organize करने में बहुत तेज हैं. We give best of our love, care and service. But once the guests have gone, then we forget. And then we look for the next conference. But this time, Delhi Sparklers team, under the guidance of Saroj Didi, had organized a follow-up get-together for the VIP guests whom we had invited. They were invited at our Dwarka Center. And it was an interactive session that took place, including some value-based games based on Baba's Gyan. And they were really so delighted to participate. And they said, "Ab hum isi parivar ka ek hissa ban gaye hain." That was a great success for us. One project running at center is Vriti Se Vayu Mandal Parivartan. Ekta Bhan us program ko supervise kar rahi hai. Jiske 15 din ke result Amrit Vela regular ho gaya, Murli regular ho gayi, peace of mind jo logon ko prapt hua aur home environment mein kafi farak aaya. Harmony and relationship structure main aapko bata hi chuka hu. Research, CSR, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप एंड इवेंट्स. यहां पर मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप भी हमारे साथ जुड़िए. वी कैन हैव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड सपोर्ट ईच अदर. और जो डीवीडी हम आगे बनाने जा रहे हैं, विच विल इंक्लूड ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स, अलोंग विद दैट द वीडियो क्लिपिंग्स. जो जो सेवाएं हमारे क्षेत्र में कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग्स होंगी. हमने श्रीकांत भाई से बात करी है कि एक अपना जैसे अबाउट स्पार्क जो है, जो पैन इंडिया जो हमारी सेवाएं चल रही हैं, उसकी क्लिपिंग्स और सेवाएं क्या हो रही हैं, जैसे हमारी बहनों ने अभी शेयर किया कितनी पावरफुल रिजल्ट्स आए हैं और कितनी अच्छी सेवाएं कर रही हैं. क्या वो सिर्फ स्पार्कलर्स या हमारे अपने बीके परिवार के लिए है, नॉलेज के लिए है? हमें पूरे दुनिया में इसको फैलाना है. और हम उसको फैला कर सकते हैं थ्रू डीवीडी, थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन्स एंड अदर थिंग्स. वी हैव टू गो बियॉन्ड टू टेक दिस ज्ञान फॉरवर्ड. तो उसमें आप सबका हमको साथ चाहिए. और साथ साथ मैं जो हमारी पूरी टीम है उसमें खास करके हमारे जो सुशील भाई हैं, एकता बहन है, अविनाश भाई हैं, समीना बहन है, मानसी बहन है, बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. वी हैव ए वंडरफुल टीम एंड वी ऑल शुड वर्क टूगेदर एज ए टीम ऑन ऑल इंडिया बेसिस. अपने रीजन में भी आप रीजनल सर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराए. We are there
to create a structure also and support you there. Balki we can have exchange of speakers also. Ki jo speakers kahe hamare region mein jo acche speaker aaye the unko hum aapki conference ke liye bhi invite kar sakte hain. Is tarah ke kuch programs jo hain hame aage lane chahiye. Jo hamari regular sevaen chal rahi hain wo to bahut achhi chal rahi hain, lekin hame thoda isko upscale aur higher scale aur beyond the limitations leke jana padega. Bahut bahut dhanyawad. Om Shanti.
धन्यवाद प्रदीप भाई जी का. मैं सभी टीचर्स बहनों से अनुरोध करती हूँ स्पार्क की ओर से कि जिस सेंटर पर भी लोकल चैप्टर नहीं खुला है तो यहाँ से अवश्य संकल्प लेकर के जाएंगे और लोकल चैप्टर अवश्य खोलेंगे, क्योंकि इससे बहुत सुंदर सेवा होती है, स्व उन्नति होती है और पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा होता है. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. अभी सबके लिए ब्रेक है, सबको 6 बजे इसी हॉल में पहुंचना है.